शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस मधुबन बेहद घर में हमारी तरफ से भी आप सभी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस भव्य हॉल में आप अपने आप को देख रहे हैं। बहुत सुंदर इसका नवीकरण इस हॉल का किया गया है, जहां आपका यह प्रथम बाबा मिलन है, तो उसके लिए भी आपको मुबारक है। बहुत सुंदर विषयों पर आपकी क्लासेस चल रहे हैं हमारे कई वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा, और मुझे जो विषय दिया गया है, ईमानदारी, वफादारी और आज्ञाकारी। आज भी बाबा ने सुबह यही कहा, आज्ञा बाबा करते हैं, कभी बाबा कहते हैं बाबा फरमान करते हैं, कभी बाबा कहते हैं बाबा राय देते हैं। तो राय देना, आज्ञा करना और फरमान करना, पहले इसको समझेंगे, फिर समझेंगे कि वफादारी क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है। तो जब बाबा कहते हैं, बाबा आज्ञा करते हैं, आज भी बाबा ने कहा, बाबा आज्ञा करते हैं कि अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये बहुत बड़ी आज्ञा है और इसका पालन बाबा हम बच्चों से करना चाहते हैं। हम बच्चों से चाहते हैं कि हम इसका पालन करें, क्योंकि ज्ञान का सार यही है, अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। योग का सार भी यही है, ज्ञान का सार भी यही है, धारणा का सार भी यही है। इस आज्ञा का अगर हमने पालन किया, तो फिर जितनी भी और आज्ञाएं हैं वो सहज पालन हो जाएगी। जो बाबा कहते हैं, काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मोह को जीतो, अशुद्ध अहंकार को जीतो, ये अलग से जीतने की जरूरत ही नहीं होगी, इस एक आज्ञा में सारी आज्ञाएं आ जाती है। अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, इससे पवित्रता भी आएगी, क्योंकि खुद को अगर आत्मा समझेंगे और बाबा को याद करेंगे, हर वक्त याद करेंगे, तो केवल मैं ही आत्मा नहीं हूँ, आप भी आत्मा हैं, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। और आज जैसे बाबा ने कहा कि सब शिव कुमार है, कोई भी शिव कुमारी नहीं है, शिव को कुमारियां नहीं है, केवल कुमार बच्चे हैं। तो जब बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, तो ये शिव बाबा हम बच्चों को संबोधन कर रहे हैं। तो शिव बाबा बहुत बड़ा बचरेवाल है, बहुत बड़ा परिवार है, सारा विश्व शिव बाबा का परिवार है, सबका पिता है, वो सर्व आत्माओं का, बेहद का वो पिता है। फिर ब्रह्मा बाबा के भी हम गोद के बच्चे बनते हैं, तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं बच्चा बच्ची, तो जब बच्ची कहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी है, बच्चा कहते हैं तो ब्रह्मा कुमार है। पर शिव बाबा बच्चा बच्ची नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा के सामने केवल आत्मा ही है और ब्रह्मा बाबा के सामने तो देह रूप में है, तो बच्चा और बच्ची बाबा कहेंगे। फिर बाबा को हम कहते हैं बाबा आप हमारे हो, माना हम बाबा के पास एडॉप्ट हो गए, दत्तक हो गए। फिर बाबा भी कहेंगे हाँ बच्चे तुम हमारे हो, तो एक नया जन्म हो जाता है। दत्तक होते हैं ना, दत्तक लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं, वो गर्भ के बच्चे तो नहीं होते हैं, लेकिन गोद लेते हैं और गोद लेते फिर उनका नाम उस जिसने गोद ली उसके नाम पर पड़ जाता है नाम, और वो ही माता पिता हो जाते हैं। पहले वाले माता पिता भूल जाते हैं और फिर सारे हक जो बच्चों को मिलते हैं वो उस दत्तक लिए हुए बच्चे को मिल जाते हैं। तो बाबा को भी जब हम कहते हैं बाबा आप हमारे हो, मैं आपका हूँ, तो बाबा के गोद के बच्चे बन गए, नया जन्म ले लिया और सारे हक बाबा से ले लिए। लेकिन बाबा तो अधिकार तो बहुत देता है, बाबा कहता है मैं तो सागर हूँ, परंतु उस सागर से हम कितना लेते हैं वो हमारे ऊपर है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि वो हक हम कितना लेते हैं। सागर कभी मना नहीं करता है कि इतना नहीं लो जल मेरे, हाँ मेरे से, लेकिन हमारे पास जितना जैसा पात्र होगा उस अनुसार ही लेंगे। सूर्य कभी मना नहीं करेगा कि हमारे से धूप मत लो, लेकिन हमारे पास खिड़कियां अगर कमरे की सब बंद है, दरवाजे बंद है, तो हम धूप कैसे ले सकेंगे, खोलनी पड़े। तो हमारे पुरुषार्थ अनुसार हम बाबा से प्राप्त करते हैं। इसलिए सतयुग में कितने सारे पद हो जाते हैं, क्योंकि बाबा अगर समान रूप से देता तो सबको एक जैसा पद मिल जाता, क्योंकि भगवान के बच्चे तो भगवान के लिए तो सब समान है। तो जब हम ये बातें समझते हैं तो हम अपने आप से पूछें कि उसके लिए हमने बाबा का दिल कितना जीता है। जितना हम बाबा का दिल जीतते हैं उतना हक ज्यादा मिलता है। वैसे तो सब हकदार है, लेकिन बाबा का दिल हम जितना जीतेंगे उतना ज्यादा हक मिलेगा, उतना हम ज्यादा हक मिलेगा माना उतना ले पाएंगे। और दिल जीतने का एक ही तरीका है, जो बाबा कहते हैं उनकी श्रीमत पर चले। उस दिन भी गीत था ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। तो ये किस माँ बाप के लिए गायन है? ये तो पारलौकिक माता पिता के लिए गायन है। तो दुआएं तब मिलेगी जब हम उनकी मत पर चलेंगे। वैसे भी मत पर चलेंगे तो दुआएं मिलेगी, आज्ञाकारी बनेंगे तो दुआएं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? लेकिन आज्ञाकारी बनने के लिए क्या जरूरी है? पहले चाहिए निश्चय। निश्चय एक बहुत बड़ा कदम है आज्ञाकारी बनने के लिए। ये हमको भगवान कह रहे हैं, ये निश्चय हो तो हम उनके आगे तदमस्तक हो जाएंगे। भगवान मुझे कह रहे हैं, जिनको हम आधा कल्प से ढूंढ रहे हैं वो स्वयं आकर हमें ये आज्ञा कर रहे हैं। तो पहले ये निश्चय बहुत जरूरी है कि हमको कहने वाला कौन है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ने ही आज्ञा की कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, पर ब्रह्मा बाबा नंबर वन आज्ञाकारी बन गए। जो शिव बाबा ने उनको कहा उसको 100% फॉलो किया, 100%, 100%। शिव बाबा ने उनको कहा कि अपनी चल अचल प्रॉपर्टी सब माताओं के आगे सुपुर्द कर दो, उनके नाम पर विल कर दो। जो कुछ बाबा के पास था, क्योंकि जौहरी थे तो बाबा के पास कुछ तो संपत्ति होगी ना, लेकिन शिव बाबा ने उनको कहा ये सब माताओं के आगे वसीयत लिख दो। और कैसे ब्रह्मा बाबा ने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। लौकिक में 5 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे। चलो 2 बेटियों की तो शादी हो गई थी, 1 बेटे की भी शादी हो गई थी, पर दूसरा 1 बेटा 1 बेटी की नहीं हुई थी। वो भी तो शादी के योग्य थे लेकिन अभी नहीं हुई थी। और बाबा को कैसे साक्षात्कार हुए और धक से बाबा ने शिव बाबा की आज्ञा मानी कि ये सब खत्म होने वाला है, विनाश का साक्षात्कार किया और धक से सब स्वाहा किया और यज्ञ की स्थापना की। अगर ब्रह्मा बाबा, अगर वे अपना तन मन धन स्वाहा नहीं करते होते तो वो जो बीज डाला जिससे इतना बड़ा वट वृक्ष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का तैयार हुआ है, जिसमें 140 देशों में 10,000 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं और हमारे जैसे हजारों बहनें समर्पित हैं और आप जैसे लाखों परिवार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए निमित्त बने हैं। पर ये शुरुआत का बीज सबसे पहला किसने डाला, किसने डाला? ब्रह्मा बाबा ने डाला। तो ये किस आधार पर डाला? निश्चय हुआ कि ये भगवान का कार्य है। ये निश्चय हुआ कि शिव परमात्मा अब नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये निश्चय हुआ कि हमको ही निमित्त बनाया है नई दुनिया की स्थापना के लिए और एक ईश्वरीय परिवार रच लिया। तो हम यही कहते हैं कि जब भगवान सृष्टि पर आते हैं तो 3 चीजें इकट्ठी स्थापन करते हैं, 3 चीजें। धर्म पिताएं जो आते हैं वो तो एक ही चीज स्थापन करते हैं, केवल धर्म की स्थापना करते हैं बस। धर्म की स्थापना करने के लिए खुद आते हैं और उसके बाद उनके धर्म की आत्माएं परमधाम से नीचे उतरती जाती है और धर्म की वृद्धि होती है। वो विनाश नहीं करते हैं, सब आत्माओं को वापस नहीं ले जाते हैं। तो वो तो केवल धर्म की स्थापना करने, अर्थ इस सृष्टि को थमाने के लिए आते हैं बस, क्योंकि सृष्टि को तो और चलना है लेकिन आधी तो पुरानी हो गई है ना, तो थमाने के लिए धर्म पिताओं की आवश्यकता है। और उस समय उनको पवित्रता का ताज मिल जाता है। उसके पहले सतयुग त्रेता में राजाई और पवित्रता का ताज दोनों देवताओं के सिर पर था। रिलीजियो पॉलिटिकल पावर एक के हाथ में थी, धर्म सत्ता राज्य सत्ता एक के पास ही थी। लेकिन द्वापर युग से धर्म सत्ता धर्म पिताओं के पास आ गई और उनके पास राजाई रह गई, राजा राज्य सत्ता रह गई। तो धर्म की स्थापना करने आए पश्चिम बाबा जब आते हैं तो जो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो चुका है उसकी फिर से स्थापना पुनः स्थापना करने आते हैं। पुनः स्थापना धर्म की अभी केवल नाम निशान ही रहे हैं, वो धर्म नहीं है देवताओं का। भले भारत में चारों ओर ये आवाज फैला हुआ है सनातन धर्म सनातन धर्म, फिर सनातन के साथ हिंदू जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में सनातन धर्म कौन सा है? देवी देवताओं का। लेकिन बाबा कहते अपने को देवता कहलाने के लायक नहीं है और स्थान के नाम पर धर्म का नाम डाल दिया। सिंधु घाटी पर ये सारी संस्कृति बसी थी, सिंधु नदी, और जो पर्शियन लोग आए उन्होंने सिंधु को स को ह कर दिया और हिंदू घाटी हिंदू शब्द पड़ गया। फिर अंग्रेज आए तो हिंद के बजाय इंडस कह दिया, इंडस सिविलाइजेशन। तो सिंधु जो संस्कृति थी वो हिंदू हो गई, हिंदू से इंडस हो गई और इंडस से इंडिया नाम पड़ गया। अब उस पर भी झगड़ा है, भारत हो कहो या इंडिया कहो, लेकिन असली नाम तो भारत है। किसी ने यहाँ तक भी कमेंट किया, अगर इंडिया शब्द आपको पसंद नहीं है, केवल भारत शब्द पसंद है, तो हिंदू शब्द भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू भी तो संस्कृति जो भी आप कह रहे हो ये तो वो अंग्रेज इंडस कहते हैं, आप हिंदू कहते हो, स्थान के नाम पर है। असली धर्म कौन सा है? सनातन धर्म, वो तो सब भूल गए हैं। और क्यों बाबा कहते भूल गए? क्योंकि अपने को देवता कहलाने के अधिकारी नहीं समझते अपने आप को। नाम भले ले लिया है, देवताओं के ही तो नाम होंगे ना, किसका नाम लक्ष्मी होगा, सरस्वती होगा, दुर्गा होगा, सीता होगा। पहले जमाने में अभी कुछ साल पहले नाम के साथ देव और देवी जोड़ते थे। मुझे याद है मेरी लौकिक माता जी का भी नाम शांति देवी था, शांति देवी, देवी के नाम से याद करते थे। मेरे लौकिक पिता का भी नाम देव, दादा का नाम देव से कुछ था, लेकिन देव पहले शब्द सबके आगे लगाते थे, लाल देव, राम देव, फलाना देव, देव फलानी देवी देवी। पर धीरे धीरे ये देव शब्द हटता गया, क्योंकि किसी में दैवी गुण ही नहीं थे, तो देव शब्द हटता गया और उसके पीछे क्या नाम पड़ा? लाल, राम लाल, फलाना लाल। तो लाल भी अच्छा है, लाल माना बच्चा बेटा लाल। पर धीरे धीरे ये राम लाल, ये लाल शब्द भी हट गया, तो फिर शब्द आया चंद, राम चंद, चंद, ये चंद शब्द आया। धीरे धीरे ये चंद शब्द भी हटता गया और चंद शब्द के बाद आया दास, राम दास, दास, दास शब्द आने लगा, भी हम तो उनके दास हैं। तो कहां देव थे, कहां देव से दास बन गए। और फिर धीरे धीरे दास शब्द भी हट गया और क्या शब्द आया? मल, वाटू मल, फलाना मल। तो मल, मल माना मैल, मल। तो सब मैले हो गए, एकदम मैले। तो हम कितने मैले हो गए जो हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हम अपने आप को देव कहें। कई बार होता है ना, किसी के अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं तो हम कहेंगे अरे सचमुच आप तो देवता हो, आप तो बिल्कुल देवी हो, अच्छे गुण हैं तो कहेंगे देव आप तो देवता हो, आप देवी हो। तो वो क्या कहेंगे? नहीं बहन जी, हम कहाँ इतने पहुंचे हुए, हम तो आपके आपके सेवक की सी ठीक है, हम देव या देवी तो नहीं है, लेकिन थे तो सही ना। पर किस आधार पर हम ये बने, किस आधार पर देवता धर्म की स्थापना भगवान ने की जब हम भगवान के आज्ञाकारी बच्चे बने, और उसके लिए निश्चय रखा कि भगवान हमारे द्वारा नई सतयुगी दुनिया की रचना कर रहे हैं, और जो बाबा ने आज्ञाएं दी हम उसका पालन करते रहे हैं। तो अभी क्या कहेंगे सबके लिए, सभी बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं? जो समझते हम आज्ञाकारी बच्चे हैं हाथ उठाओ। अच्छा, वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाओ। तो जो बाबा की श्रीमत हमें मुरलियों से मिलती है, एक एक श्रीमत पर हम ध्यान दे करके उसका पालन करते हैं। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत दी हुई है, और उसका जो पालन करते हैं उसको हम आज्ञाकारी कहेंगे। तो आज्ञाकारियों के लिए तो प्राप्ति तो बहुत ऊंची है, तो निश्चय के साथ से नशा भी रहता है कि प्राप्ति हमारी बहुत ऊंची है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
हर मुरली में बाबा हमें कोई न कोई आज्ञा जरूर देते हैं। तो अपने जब मुरली की स्टडी करते हैं ना, पढ़ते हैं मुरली, और जब उसका अच्छा अध्ययन करते हैं, तो आज बाबा ने कौन कौन सी आज्ञाएं की है वो लिस्ट तैयार होनी चाहिए, और रोज वो लिस्ट देखो, इतनी सारी जो आज्ञाएं बाबा ने की दी हमें अमृत वेले से रात्रि तक, यहाँ तक कि नींद में भी उसकी भी आज्ञा है। कितनी मैंने आज्ञाएं पालन की उसको टिक मार्क करो, और जो नहीं पालन की फिर उसका क्या करेंगे? हाँ, बाबा से क्षमा ले लो, बाबा ये मेरे से भूल हो गई है, ये आज्ञा जो आपने की थी वो मैंने पालन नहीं की। आज्ञाओं में बहुत कुछ आ जाता है, हमारा अन्न कैसा हो, हमारा संग कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, हम क्या सुने, क्या बोले, क्या देखें। आज जो बाबा ने कहा हियर नो ईविल, सी नो ईविल, टॉक नो ईविल, ये कितनी बड़ी आज्ञा है। पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, पर दोष, पर मत, ये सब आज्ञा के विरुद्ध है। और इतनी सारी बातें जो आज्ञा के लिए दी है वो पालन अगर नहीं की तो बाबा से उस दिन के लिए हाँ क्षमा मांग लो। और बाबा ने कहा आई एम सॉरी, बाबा को कहो, बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा। तो अगर बाबा को सच बता दिया तो बाबा आधी माफ भी करेगा। फिर बाबा के आगे प्रतिज्ञा करो, बाबा ये भूल फिर नहीं होगी। तो आज्ञा का पालन करना माना बाबा के दिल पर चढ़ना और उसके लिए ऊंच पद और उससे ऊंच पद पाना। और जिस दिन ये आज्ञा पालन कुछ नहीं हुई तो बाबा से माफी ले लो, हल्के हो जाएंगे। नहीं तो मन खाता रहेगा बाबा की आज्ञा मैंने पालन नहीं की। परंतु आगे के लिए सावधान हो जाएं। परंतु कुछ शब्दों के लिए बाबा फरमान कहते हैं, आज्ञाएं तो है लेकिन उनसे ऊंचा है फरमान, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। मिलिट्री वालों के आगे ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर का पालन अगर नहीं किया तो बहुत बड़ा दंड है। तो बाबा हमारे आगे ऑर्डिनेंस भी निकालते हैं। बाबा कई बार शब्द यूज करते हैं ऑर्डिनेंस, फरमान। मिलिट्री वालों के आगे फरमान आता है, ये करना ही है हर हालत में, नहीं तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। जिसके लिए बाबा कहते हैं पवित्रता की पालना, ये फरमान है। अन्न की शुद्धि, ये फरमान है। संग की शुद्धि, ये फरमान है। तो आज्ञा चलो नहीं मानी थोड़ी बहुत, सब अमृत वेले नहीं उठ पाए, बहुत थके हुए थे, तो चलो कहो बाबा को, बाबा आज मैं नहीं उठ सका, चलो कल मैं और जल्दी उठूंगा। तो बाबा के आगे सॉरी भी किया और प्रतिज्ञा भी की कि कल हम और जल्दी उठेंगे। परंतु फरमान का अगर पालन नहीं किया तो बाबा कहते 100 गुना सजा है, 1 का 100 गुना सजा। क्योंकि भगवान का बनकर और भगवान का कहना नहीं माना या और उससे आगे जाके डिससर्विस की तो क्या कहा जाएगा? गुरु का निंदक ठौर ना पाए, डिससर्विस की तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। और बाबा कहते कई डिससर्विस करते हैं तो फिर इतना दंड के भागी बन जाते हैं, क्योंकि कितनी अबलाएं, फिर उनके ऊपर अत्याचार होते हैं तो कितनी बड़ी सजा के भागी बन जाते हैं। बहुत हमारे सामने मिसाल है, बहुत बड़ी सजा मिलती है। एक छोटा सा मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ कि दुबई गई थी मैं, तो वहाँ एक माता है तो उनके 2 बेटियाँ हैं। अब पवित्रता पर इतना झगड़ा चलता था, उसको मार देता था पति, बहुत मारता था। लेकिन उसने भी ठान लिया भले मारो मुझे लेकिन मैं अपनी पवित्रता भंग नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। और वो मार भी खाती रही लेकिन पति की सेवा बहुत प्यार से करती थी। पर मार भी खाती थी। और फिर आखिर वो स्थिति आई कि पति को कैंसर हो गया, इतना टेंशन में होगा, कैंसर हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लास्ट स्टेज थी, लेकिन पत्नी ने अपनी सेवा कम नहीं की, पूरी सेवा की। तो हम दुबई गए थे तो उसने मुझे कहा, बहने कि आप पति से मिल, मेरे युगल से मिलने हॉस्पिटल में आओ, और अपनी कहानी बताई कि कैसे मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत मारते थे, लेकिन मैंने अपनी पवित्रता का जो प्रण लिया था वो मैंने भंग नहीं होने दिया। तो बहुत मारते थे, मैं मार खाती रही। तो अभी उसको अभी कैंसर हो गया है और डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया है कि अभी बस मुश्किल से कुछ दिन के मेहमान हैं, तो आप चलो उनको सकाश। तो फिर भी देखो उसके प्रति कितनी श्रेष्ठ भावना रखी कि आप चलो और उनको सकाश दो, दृष्टि दो। तो मैं गई हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए। शाम को मैं गई और उनसे मिली, उनको दृष्टि दी, तो मेरे आगे इतना रोने लगा, इतना रोने लगा, इतना रोने लगा, बात मत पूछो, इतना बड़ा व्यक्ति। और मुझे कहता है, बहन जी भगवान को कहो मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे, मुझे माफ़ करे, मैंने बहुत गलतियां की है, बहुत गलती की है, मुझे माफ़ करे। तो रोने लग गया, बहुत रोया, जोर जोर से, जैसे छोटा बच्चा रोता है ना, वैसे रोने लगा, बेड पर पड़ा था। तो उसकी पत्नी कहे, नहीं नहीं आप मत सोचो, मैं भी कहूँ नहीं सोचो, भगवान ने आपको माफ़ कर दिया है, बस अब भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, बस अब वही काम हमको करना है। और फिर तो हाँ, डॉक्टर ने जवाब तो दे दिया था, कभी भी जा सकता है। तो अगले दिन सुबह जब मैं क्लास कराने बैठी, योग में बैठे थे, और जैसे शुरू हुआ क्लास तो सबसे पहले उस आत्मा की याद आई और मैंने ये क्लास में बताया। और उसी समय न्यूज़ आई कि उसने शरीर छोड़ा बिल्कुल शांति में, और शरीर छोड़ा बिल्कुल जैसे शांति में वो आत्मा गई, बिल्कुल जैसे निश्चिंत होकर गई, क्योंकि माफ़ी मांग ली और सारा दुख दर्द उनका मिट गया और आत्मा बिल्कुल जैसे खाली हो गई और मुक्त हो गई। उसी समय 6 बजे सुबह मुरली शुरू हुई वहाँ, और उस समय मैंने उसकी बात कही कि हम उनके लिए भी योग करते हैं, और उसी समय न्यूज़ आ गई कि सबका योगदान ने कैसे काम किया और वो आत्मा शांति से दे त्याग करके कैसे मुक्त हो गई। तो देखो अंत में पश्चाताप तो हुआ ना। तो बाबा कहते हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो पश्चाताप करना पड़े, इसीलिए श्रीमत का पालन करो, अपना समय, श्वास, संकल्प, शक्ति को व्यर्थ मत गवाओ। ये भी आज्ञा की आज बाबा ने, ये अमूल्य जीवन संगम युग का, इसको जरा भी व्यर्थ नहीं गवाओ। हमारे श्वास भी गिने चुने हैं, समय तो है ही गिना चुना, हम समय को बढ़ा तो नहीं सकते हैं, 24 घंटे का 40 घंटा तो नहीं कर सकते हैं, ना ही समय है। लेकिन कोई उसको व्यर्थ गंवाते हैं और कोई उसको सफल करते हैं। श्वास भी ऐसे ही है, जितना अगर हम गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, वैर दुश्मनी या जो कुछ भी करते हैं, हमारा श्वास कितना जल्दी जाता है, चिंताएं करते तो श्वास कितना जल्दी जाता है। और जब अगर योगी जीवन है तो श्वास भी लिमिटेड चलते हैं, आयु बढ़ जाती है। कहते हैं ना, गुस्सा वाला जो क्रोधी होता है उसके घर के मटके ही सूख जाते हैं, लेकिन मटके तो बाद में सूखेंगे, पहले तो उसका खून सूख जाता है ना, क्रोधी का खून ही सूख जाता है, पीला पीला हो जाता है, गुस्से वाला बहुत होता है तो, और मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं, और ये दुश्मनी पाल लेता है। तो इसीलिए बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है वो हमारे कल्याण के लिए है। अगर हम ये समझते हैं और ये निश्चय है कि ये भगवान हमें श्रीमद दे रहे हैं और भगवान के कार्य में हम मददगार हैं, बाबा कहते मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो हम उनके मददगार बनकर नई दुनिया की स्थापना के लिए निमित्त बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, योगी बन रहे हैं। और हम न बनेंगे तो और कौन बनेगा, और हमें ही वो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। तो बाबा हमें प्रलोभन भी देते हैं, क्यों नहीं मिलेगी, मेहनत करते हो क्यों नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। तो एक तरफ है आज्ञाकारी, उसमें फरमान बरदार भी आ जाता, और दूसरी ओर है वफादारी। वफादार पतिव्रता स्त्री कितनी वफादार होती है, एक पति के सिवाय और कोई उसकी बुद्धि में नहीं है। बाबा सत्यवान सावित्री का मिसाल देते हैं, उस दिन भी बाबा की मुरली में था। सत्यवान सावित्री, सावित्री उस सत्यवान की इतनी पतिव्रता स्त्री थी, और वो उसको वो मर गया, लेकिन इतनी उसके अंदर शक्ति थी सावित्री में, जो धर्मराज से सत्यवान की आत्मा को वापस ले लिया। इतनी ये वफादारी है, बताते ना कहानी तो यही आती है। वफादारी माना एक के सिवाय और कोई नहीं। तो हमारे अंदर कितनी वफादारी है, सब संबंध एक के साथ, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मीरा बाई ने बहुत वफादारी दिखाई, उसने राणा का भी त्याग किया पर एक श्री कृष्ण के कारण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिखाते ना कि मीरा बाई जब छोटी थी, 8-10 साल की थी, राजकुमारी थी, महलों में रहती थी, तो एक दिन उसी गली में बारात जा रही थी किसी के, तो दुल्हा और दुल्हन वहाँ बैठे थे। वो तो बारात जा रही थी तो अनायास बड़े भोलेपन से मीरा जो छोटी बच्ची थी उस समय अपनी माँ से पूछा, माँ ये दुल्हा इनका इस दुल्हन का है, मेरा दुल्हा कौन है। तो उसकी माँ ने, वो कृष्ण की भक्ति करती थी, तो उसने श्री कृष्ण की उसको मूर्ति दी और कहा ये तेरा दुल्हा है। बस वो मूर्ति लेकर के उसके साथ ही सोती थी, उसको खिलाती थी, उसके साथ ही बातें करती थी, उसको नहलाती थी, उसको पहना कपड़े पहनाती थी, बस वही। फिर जब शादी भी हो गई, राजा से शादी हुई, राणा से, लेकिन उसने राणा को कहा मेरा दुल्हा तो श्री कृष्ण है, कुछ भी हो जाए। फिर कितनी उसको त्रासदियां मिली, लेकिन कैसे भगवान ने उनकी मदद की, दिखाते हैं ना सारी कहानी है उनकी, कितनी कहानियां हैं। तो देखो एक कारण क्या था, वफादारी, किसी भी अन्य को स्वीकारा नहीं उसने। तो बाबा कहते हैं छोड़ना कुछ नहीं है, जो आपके जो संसारी कुल मर्यादाएं हैं वो तो भले पालन करो, मना थोड़ी है। अगर घर में आपको कहते हैं घूंघट निकालो निकालो, हर्जा क्या है। अगर आपको कहते हैं नहीं भक्ति करो करो, हर्जा क्या, बाबा मना नहीं करते। बाबा यहाँ तक कहते किसी को भी कभी नहीं कहो कि भक्ति छोड़ो। जब उसको ज्ञान मिल जाएगा कि मैं खुद ही देवता बन रहा हूँ, तो अपने आप छूट जाएगा, आपको नहीं कहना है कुछ। आप उनको ज्ञान दो कि हम कैसे देवता थे, पूज्य थे, फिर पुजारी बनकर अपने पूज्य रूपों की पूजा करते रहे हैं। अभी फिर हमको भगवान आया है पूज्य बनाने लिए, इतना ऊंचा बना रहे हैं, फिर से हमें ऐसा बनना है। तो धीरे धीरे उनको समझ आ जाएगी और अपने आप उसके अनुसार पुरुषार्थ करना शुरू कर दें। आपको नहीं कहना है भक्ति छोड़ो। तो जब ये समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है और बुद्धि एक से जुड़ती है। सब संबंध एक के साथ है। बाबा यहाँ तक कहते अगर कोई भी संबंध किसी और से जोड़ा चलो बाकी सब संबंध एक के साथ शिव बाबा के साथ, लेकिन एक मेरा दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है, वही मेरा सच्चा दोस्त, वही दोस्त है। कुछ भी हो जाए वो दोस्त के साथ इतना संबंध है जो बात मत पूछो। पर बाबा को दोस्त नहीं बनाया, अपने दिल की बातें बाबा को नहीं सुनाई, उस दोस्त को ही सुनाते रहते हैं, तो क्या होगा ना, वो दोस्त कहाँ तक मदद कर सकेगा, हर पल मदद कर सकेगा, वो दोस्त हर वक्त आपके साथ होगा क्या? लेकिन खुदा दोस्त हर वक्त आपके साथ है, हर वक्त आपके साथ है। इसीलिए सच्ची दोस्ती तो बस एक बाबा से हो, दिल की बातें सब बाबा को सुनाओ, और दिल की बातें बाबा को सुनाई तो बाबा बंधा हुआ है मदद करने लिए, क्योंकि वो तो दाता है ना। मनुष्यों को दिल की बात सुनाई, क्या पता वो किसको जाकर के सुनाएंगे, डर लगता है पता नहीं इसको मैंने सुनाया है किसी और को न जाके सुनाए, पर बाबा को सुनाया तो विश्वास है कि बाबा किसी को नहीं सुनाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल दोस्त है, कॉन्फिडेंशियल है, बिल्कुल सीक्रेट आपके पूरे रखता है वो। तो क्यों हम दूसरों को सुनाएं, बाबा को सुनाओ, परंतु अगर बुद्धि में फलाने को सुनाना है फलाने को, तो वो आत्मा याद आई ना, बाबा तो भूल गया, तो वफादार कहाँ हुए। वफादार माना कोई भी दिल का टुकड़ा खाली नहीं हो किसी और के लिए, जैसे हनुमान का दिखाते हैं, बस दिल में एक राम बसा हुआ है बस। तो ये जो भी मिसाल शास्त्रों में है ये सब हमारे ही तो है, हम ही तो हनुमान भी है, हम ही तो गणेश भी है, हम ही है ना, शिव के पुत्र हैं हम, गणेश है, बजरंग बली भी हम है, विघ्न विनाशक भी हम है। तो जब ये हमको निश्चय हो जाता है तो एक के सिवाय और कुछ नहीं, तब हम विजयी रत्न बन सकते हैं, बाबा के नजदीक आ सकते हैं। और फिर जितनी वफादारी, एक बाबा दूसरा न कोई, गीत गाते हैं ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, सदा ये गीत गाते रहो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। परंतु इसका मतलब ये नहीं बाकी सबको छोड़ दो, ये भी नहीं, जितना ही न्यारा उतना ही प्यारा भी बनना है, लेकिन समय समय पर, जिस समय न्यारा बनना उस समय प्यारा बनने की कोशिश नहीं करो, और जिस समय प्यारा बनना उस समय न्यारा बनने की कोशिश नहीं करो। किस समय न्यारा बनना होता है, जब कोई शरीर छोड़ता है, बस इस आत्मा का मेरे साथ इतना ही पाठ था, तब कहेंगे शक्ति रूप, तो न्यारा बन जाना होता है। और जब सेवा का रूप है तो खूब प्यार से सेवा करो, ये थोड़ी है बस मुझे न्यारा बनना है मुझे कोई सेवा नहीं करनी है, क्योंकि लौकिक से भी हिसाब किताब तो है ना, आप उसको छोड़ के जंगल में जाकर सन्यासी तो नहीं बने हो ना, और बाबा तो छुट्टी भी नहीं देते हैं, छोड़ो कुछ भी नहीं छोड़ो, कुछ भी नहीं छोड़ो, पर कुछ भी नया नहीं जोड़ो, अभी अभी समय नहीं है नया जोड़ने का, नए संबंध जोड़ो और फिर उनको निभाओ, अभी समय नहीं है, जो है उसको निभाओ। इसीलिए ना छोड़ो न कोई नया जोड़ो, लेकिन जो है उसको निभाओ, क्योंकि छोड़ के जा नहीं सकते हैं, पर नए नहीं जोड़ो। और जितना ये सोचेंगे कि निभाना है न्यारा प्यारा हो करके, तो सहज ही हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे, सहज, उसके लिए कोई कठिनाई भी नहीं आएगी। अगर कठिनाई आती है माना कहाँ न कहाँ बाबा कहते हैं मोह अटका हुआ है, लटका हुआ है। हमारी दादी जानकी जी बड़े मजेदार शब्द कहती थी, लटकना अटकना मटकना, हाँ पता नहीं क्या क्या शब्द इनसे जोड़ते थे। लटक पड़ते हैं, अटक पड़ते हैं, मटकते रहते हैं, ऐसे नखरे करते रहते हैं, देह अभिमान के ही ये शब्द है। लेकिन न लटकना है, न अटकना है, न मटकना है, न भटकना है, हाँ ये भी जोड़ दो, भटकना भी नहीं है। लेकिन स्थिर बुद्धि एक में बस, तो इसको कहेंगे सच्चे वफादार। और फिर तीसरा शब्द है ईमानदार, और दादी जानकी के शब्द थे सच्चाई, सफाई और सादगी। ये तीन शब्द दादी जी हमेशा कहा करते थे, दिल की सच्चाई और सफाई, जो है बाबा को बता दो, जो है बाबा को बताओ बस, या माने और किसी अन्य का सुनने की जरूरत नहीं है, पर चिंतन करने की जरूरत नहीं है। चलो कोई भी बात हुई पर चिंतन करते हैं ना, इसने ऐसे किया ऐसे किया, और छोटी बात को कई बार इतना बढ़ा देते हैं, बात तो कुछ भी नहीं होती है, बात का बतंगर बना देते हैं, तो अपने ऊपर ही दोष लगता है। हम क्यों बने जबकि किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ईमानदार माना बाबा से सच्ची सच्चाई और सफाई, और जो है जैसे है सच बता दो, अगर कोई भूल हुई सच बता दो, हल्के हो जाओ, क्योंकि यहां अगर सजा नहीं मिलेगी तो धर्मराजपुरी में तो मिलेगी ना, कहां तक छिपाएंगे, कहां तक छिपा सकेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो पर और आगे के, छिप तो सकेगी नहीं, वो मिट तो सकेगी नहीं, वो तो उसकी भोगना तो भोगनी है, तो सच बता दो, जो जो होगा ठीक है, क्योंकि हमारे ही कर्म है। तो इसको कहेंगे सच्चाई और सफाई। अगर कोई भूल नहीं हुई तो भी डरने की जरूरत क्या है, क्योंकि एक दिन तो सच्ची बात तो प्रकट हो ही जाएगी, सच तभी तो नच, सच्चे व्यक्ति को डरने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, एक दिन वो बात अवश्य प्रकट होगी। और अगर आपने अच्छा कार्य किया तो वर्णन करने की भी जरूरत नहीं है, वर्णन करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने ये किया, कई दोनों बातों में गलती करते हैं, कोई गलत काम किया तो छिपाएंगे कि भी, और किसी को पता भी चल गया तो कहेंगे किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, खुद भी छिपाएंगे और दूसरे को भी छिपाने लिए कहेंगे। और कोई अच्छा काम किया, कोई विशेष सेवा की और बाबा का नाम कुछ अच्छा रोशन किया तो 10 लोगों को 100 लोगों को सुनाएंगे, मैंने ये किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। बाबा कहते वो भी नहीं करो, जरूरत नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल, बाबा देख रहा है, बाबा जानता है, और बाबा ही उसका फल देगा, मनुष्य थोड़ी फल देंगे। कई बार हम इतनी अच्छी बात बहुत सुनाते हैं, लोग खुश होने की बजाय ईर्ष्या ही करते हैं, इसलिए जरूरत क्या है, दूसरी हमारी महिमा करे, लेकिन मैं अपनी महिमा न करूं, मियां मिठू न बनूं। हाँ दूसरी भी अगर महिमा करे तो उनको भी हम कह सकते हैं, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया है तो बाबा ने कराया ना, बाबा कई बार कहते महिमा स्वीकार भी नहीं करो। अगर महिमा स्वीकार करेंगे तो ग्लानी भी स्वीकार करनी पड़ेगी, ये हो नहीं सकता केवल महिमा स्वीकार करो और ग्लानी स्वीकार नहीं करो, नहीं 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 मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, और साबित करने की कोशिश करो, जरूरत नहीं है। एक बार कह दिया नहीं है तो ठीक है भाई, मैं तो जो सच्ची बात है बता रहा हूं। तो इसीलिए दूसरा कोई आपकी निंदा कर रहा है तो उसके लिए भी मत सोचो ये निंदा क्यों कर रहा है, वो मेरा हिसाब किताब इसके साथ था, वो चुप चुप हो रहा है, उसने उसकी उतनी समझ है तो इसीलिए ये ऐसे कह रहा है। जितनी उसकी समझ होगी उसी अनुसार ही तो वो कहेगा, तो उस पर दया आती है, नफरत नहीं आती है, उससे वैर नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। वो आत्मा जो है जैसी है ठीक है, बाबा ने उसको ही पसंद किया है, ये भी ईश्वरीय परिवार का हिस्सा है, उसका अपना पार्ट है, और जो करेगा वो तो भरेगा ही, पर मैं अंदर से सच्चाई सफाई में रहूं, मेरा किसी के प्रति भी वैर न हो, मेरे अंदर किसी के प्रति दुर्भावना न हो, बदला लेने की भावना न हो। हमेशा याद रखते हैं, बदला न लो, बदल कर दिखाओ, मुझे बदलना है क्योंकि मेरा कर्म मेरे साथ है, हर एक का कर्म उसके साथ है, हाँ पर मेरी उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना है, वो भी सुधर जाए, वो भी बदल जाए, उसको भी सद्बुद्धि बाबा दे जाने। तो इससे क्या होगा, अगर कोई आपकी महिमा करेगा आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो कल अगर उसने निंदा की तो वो भी स्वीकार नहीं करेंगे, दोनों से आप न्यारे हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे महिमा स्वीकार की तो फूल गए, जैसे बलून की तरह फूल गए, और कल थोड़ी सी निंदा की एक सुई लगाई सारी हवा निकल गई, सारे फुस होता है ना बलून, हवा ही निकल जाती है तो कैसा हो जाता है, तो मुरझा गए। तो बाबा कहते उस दिन भी बाबा ने कहा मुरझाना नहीं है, सदा खिला हुआ फूल रहना है। योगी की स्थिति कैसी होती है, अभी भी क्लास उषा बहन ने कराए ना, तो सच्चे योगी की स्थिति कैसी होती है, जिसको अंश मात्र भी देह अभिमान नहीं हो, वो आत्माभिमानी स्थिति देही अभिमानी स्थिति में हर वक्त व्यवहार करे। कल तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी, आपकी स्थिति इतनी ऊंची चाहिए जो जो भी आपके सामने आए वो आपको किस रूप में देखे, उसको भी साक्षात्कार हो जाए, आपको उस फरिश्ता स्थिति में देखे, लाइट आकार में देखे, आपकी दृष्टि से उनको बाबा दिखाई दे, तो हर एक को तो यही तो बनना है, बाप समान यही बनना है ना, तभी तो हम बाबा के सच्चे बच्चे कहला सकेंगे, बाबा का नाम रोशन करने वाले। लेकिन कौन कर सकेंगे बाबा का नाम रोशन, जो आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे, ईमानदार होंगे। और इसी में बड़ा सुख है, क्यों हम बेईमानी करें, क्या चाहिए, कितना चाहिए, जितना सच्चाई सफाई और सादगी में सुख है ना, उतना मान शान या महिमा और शो उसमें कोई सुख नहीं है। इसका नाम आगे हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ, होने अच्छा है ना, इसका पार्ट है अपना। तो जब ये बात सोचते हैं तो मन को एकदम फुल स्टॉप लग जाता है, हम अपनी स्थिति को ऊंचा बनाए ना, मेन तो वही है, बाकी तो सब बाबा कहते हैं बाई प्लॉट्स है, ये सब बाई प्लॉट्स है, अलग अलग बस जो साइड सीन्स है, ये तो चीजें आएंगी और जाएंगी, बातें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन मेरी स्थिति इतनी ऊंची हो, क्योंकि अंत में यही काम आएगा। इसलिए बाबा तीन ऐसे शब्द कहते हैं जो हर वक्त हमको याद रहने चाहिए, वो कौन से तीन शब्द हैं, एक तो बाबा कहते अचानक, अचानक अभी तो खेल ही ये चल रहा है, अचानक का ही खेल चल रहा है, कुछ भी हो सकता अचानक, अभी ये इतना जो लड़ाई लगी है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में, अचानक वो इजराइल के भाई बहने हैं उनमें से कुछ आए हुए हैं ज्ञान सरोवर में, वो बच्चा बता रहे थे कैसे अचानक रात को मिसाइल अटैक हुआ एकदम हमारे देश पर, का अंधाधुंध बिल्कुल जैसे मिसाइल छोड़े गए, अंधाधुंध कुछ एकदम अंधेरे में पता ही नहीं चला, अंधाधुंध और लड़ाई शुरू हो गई। तो इसराइल भी कम थोड़ी है, उसने भी अटैक किया, बहुत लोग मरे, मारे हजारों लोग मारे गए होंगे। पर बाबा के सेंटर्स है इसराइल में, बाबा के सेंटर है, 6 सेंटर है इसराइल में, छोटा सा देश है, और कुछ लोग आए हुए ज्ञान सरोवर पर, बाबा के बच्चे सब सेफ है, वो समाचार लेते हैं। तो इसलिए देखो बाबा रक्षक बन करके कैसे अपने बच्चों की रक्षा भी करते हैं। पर कुछ भी हो सकता है, अचानक ही होना है, एकदम से भूकंप आ गया, एकदम से बाढ़ आ गई, एकदम से वो बादल फटा, अभी सिक्किम में यही तो हुआ, जोर से इतना बादल फटा, कितने लोग मर गए, अचानक बस गिरी, ट्रेन गिरी, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं, होता ही रहता है कुछ न कुछ। और बाबा कहते आगे चल करके तो दुखों के पहाड़ गिरने हैं, दुखों के पहाड़। अभी तो फिर भी थोड़ा यहाँ मरे, थोड़े वहां मरे, फिर तो बाबा कहते होलसेल होगा, क्योंकि सब आत्माओं को वापस तो जाना है, पर उसके पहले यहीं सजा भोगनी है, गर्भ जेल की सजाएं भी यहीं होगी। इसलिए अचानक, पर अचानक के लिए तैयार होने के लिए एवर रेडी, रोज अपने से पूछो बाबा आज अगर मेरा शरीर छूट जाए मैं तैयार हूं, अपने आप से पूछो मैं तैयार हूं, कुछ याद तो नहीं आएगा, कुछ मेरा हिसाब किताब रहा हुआ तो नहीं है, जो है हिसाब किताब पूरा कर लो, कल के लिए नहीं छोड़ो, नहीं तो वो ऋण चलेगा आपके साथ। तो इसीलिए दूसरा है एवर रेडी, पर एवर रेडी रहने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंत में केवल बाबा याद आए और कोई याद न आए उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि अंत में ही अभ्यास नहीं हो सकेगा। हाँ कई बच्चे होते ना उनका सोचते मैं तो बहुत होशियार हूँ, एग्जाम का दिन आएगा उसके 2 दिन पहले मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं तो 2 दिन में मुझे सब याद रह जाएगा। अब 2 दिन 1 दिन पहले किताब खोली उसने, तो किताब खोली क्या, पढ़ना शुरू तो क्या किया, इतना नर्वस हो जाएगा, जो कुछ याद भी किया ना एग्जाम पेपर के आगे, फेल, एकदम कुछ भी याद नहीं आएगा, एकदम डायरिया हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, एकदम कांपने लगेगा, सोचा मैं तो बहुत होशियार हूँ। लेकिन अगर बहुत समय से अभ्यास है तो भले परीक्षा आए, अच्छा नहीं मैं तैयार हूँ, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है, तो बहुत समय का अशरीरीपन का अभ्यास ये अंत में हमको मदद करेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, अंत में किसकी याद रही, अंत मति सो गति उसी अनुसार होगी, अंत में सिवाय बाबा की और कोई याद न आए उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, केवल एक बाबा को याद करना। अगर पर चिंतन में उसमें उसमें समय निकाला तो अंत में वही याद आएगा, अगर खाने पीने का बहुत शौक होगा तो अंत में वही याद आएगा, है बहुत मिसाल है। एक बहन थी वो, उसको खाने पीने का बहुत शौक था, बहुत शौक, अब उसकी अंतिम घड़ी आई, अंतिम घड़ी, और उसने कह दिया मुझे तो पानी पूरी चाहिए, पानी पूरी चाहिए। बताओ पानी पूरी कोई ऐसे थोड़ी एक 5 मिनट में बन जाती है, पानी पहले पूरी बनाओ, उसका पानी बनाओ, फिर उसके लिए चीजें बनाओ, अब पानी पूरी चाहिए, बस जिद करके बैठ गई, पानी पूरी चाहिए। चलो उसका इसकी दिल पूरी करने लिए जैसे बनानी शुरू कर दी, उसी बीच में ओम शांति गई। अब सारी बुद्धि किसने थी उनकी? पानीपुरी में, बताओ पानीपुरी में। तो अंत में ये माया ऐसे परीक्षा लेती है और उसमें फेल हो गए, क्योंकि जीव का चस्का बहुत था। तो क्यों ऐसे अंत में हो, क्यों माया इस प्रकार से हमको हरा दे रहे? इसीलिए बाबा कहते हैं राजयोग, आज भी बाबा ने कहा ना कल का, स्वराज्य योग अधिकारी। स्वराज्य केवल राजयोग नहीं है, स्व पर राज्य, अपने इंद्रियों पर राज्य, अपने मन पर राज्य। धीरज धर मनवा, ये मन को कहा। तो मन को कहा, मनवा माना मनुष्य नहीं पर मन, मन और बुद्धि। तो इंद्रियों पर राज्य, मन बुद्धि पर राज्य, सबके दिलों पर राज्य। कोई भी बाहुबल से विश्व को नहीं जीत सका है, हथियारों के बल से, युद्ध के बल से विश्व नहीं जीत सका है। परंतु लक्ष्मी नारायण ने विश्व कैसा जीता, किस आधार पर विश्व, सारे विश्व को जीता, तभी तो विश्व के मालिक बने ना। किस आधार पर विश्व के मालिक बने? सबका दिल जीत लिया। हाँ, बाबा मम्मा ने यही किया ना, सब बच्चों का दिल जीत लिया। सब कहे मेरा बाबा, मेरी मम्मा, माँ बाप, तो दिल जीता ना। तो दिल यहाँ जीता तो तब भविष्य में विश्व का तख्त मिला उनको, है ना। तो क्या मैंने सबका दिल जीता है, ये पूछना है। और दिल कैसे जीतेंगे, सबका दिल कैसे जीतेंगे, जब उनकी सेवा करेंगे। सेवा करेंगे ही नहीं और कहेंगे कि मुझे मेरी सेवा हो, तो दिल थोड़ी दूसरों का जीतेंगे। दिल तब जीतेंगे जब सच्चाई सफाई होगी, सबकी दुआएं मिलेगी, किसी की बद्दुआ न मिले। अगर बद्दुआ मिली तो सारी की कमाई चट। तो दुआएं कमानी है, धन कमाया कौन सी बड़ी बात की, और दुआएं ही अंत में काम आएगी। दादी प्रकाशमणि जी से पूछते थे कि दादी जी आप क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या आपका पुरुषार्थ है, बड़ी दादी से पूछते थे। दादी कहती थी बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे सबकी दुआएं मिले, सबकी दुआएं मिले। अब बताओ कितना बड़ा लक्ष्य, और सचमुच कितनी दुआओं ने काम किया। जब दुआएं काम करती है ना, तो अपने पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती है। पर दुआएं नहीं मिल रही है, बददुआएं मिल रही है, तो चाहे कितनी मेहनत करो वो मेहनत निष्फल जाती है। तो इसीलिए दुआएं कैसे आएगी, जब इतना ही ईमानदार होंगे, सच्चाई होगी, सफाई होगी, अंदर बाहर साफ होंगे। बाबा एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा की आज्ञाकारी होंगे, नम्रता होगी। नम्रता भी एक बहुत बड़ा गुण है। फिर बाबा ने जैसे कल का धैर्यता होगी, धैर्य का गुण बहुत मीठा है। धैर्यता संतोष इतना बड़ा गुण है, सभी गुणों का श्रृंगार का ताज है संतोष का, का श्रृंगार। पर संतोष भी कैसे आएगा जब धैर्यता होगी। अधीर्य क्यों बनते, मुझे चाहिए, स्वार्थ है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और जो मेरे मेरा हिस्सा है अपने आप मिलेगा। सचमुच हमने देखा मुझे किसी के पीछे जाने की दरकार नहीं है, मेरा अधिकार हमारा कोई छीन नहीं सकता है, मेरा भाग्य कोई ले नहीं सकता है। तभी तो गायन है ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो अधीर्य भी नहीं बनना है, क्योंकि अधीर्य माना समय से पहले चाहना, और भाग्य से ज्यादा लोभी। जबकि ये नहीं होना है तो क्यों अधीर्य बने, क्यों हम लोभ रखें, और कितना चाहिए। इसीलिए सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, सादगी, आज्ञाकारी, वफादार, बस ये हमारा जीवन हो, तो सबके लिए आदर्श बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।
सांसों की माला में जिसकी याद है तिरोई, सांसों की माला में जिसकी याद है तिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई।
Thank you.